بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتي مازن. ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مریض اپنے شیخ کو جس قدر یاد کرے، ان کی طرف رجوع رکھے، مرشد صاحب کا دھیان اسی قدر زیادہ اس مریض کی طرف رہے گا. کنفیوژن یہ ہے کہ لوہا مقناطیس کو کیسے اپنی طرف کھینچ سکتا ہے. ازراہ کرم وضاحت کر دی. لوہا مقناطیس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، بشرطے کہ لوہا زیادہ وزنی ہو اور مقناطیس ہلکا وزن میں. تو پھر بجائے اس کے کہ لوہا کھینچا جائے، مقناطیس لوہے کی طرف کھینچ جاتا ہے. اگرچہ کشش مقناطیس ہی کی ہے جو وہاں کام کر رہی ہے، لیکن چونکہ وزن میں ہلکا ہے تو وہ بھاری چیز کی طرف چلا جائے گا. تو یہ تو کہیں فزکس میں جب ہم کہیں کلاس سکس میں پڑھتے تھے تو ہم نے اسے پڑھا تھا. اصل میں یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے لیے خاص قسم کے ذہنی ساخت کی ضرورت ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی میری ذہنی ساخت وہ ہے نہیں کہ ان چیزوں کی طرف کبھی توجہ دے دوں گے، میں شیخ کو یاد کروں. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ میرے مرشد صاحب نے فرمایا تھا کہ جو تمہیں پڑھنے کو میں نے دیا ہے وہ بس پڑھتے رہو، منزل پہ جا پہنچو گے. پھر خود ہی فرما دیا کہ تم پڑھو کیوں، ہمارا نام جپتے رہو، منزل کو جا پہنچو گے. فرمایا نام بھی کیوں جپو، صرف ہم سے پیار کرتے رہو تو منزل پہ جا پہنچو گے. وہ میری ذہنی ساخت ایسی ہے کہ شاید الفاظ پر میں کبھی غور نہیں کرتا، الفاظ کیا کہہ رہے ہیں. میری توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، الفاظ کیا کہہ رہے ہیں اس سے غرض نہیں ہے. کہنے والے نے کہا کیا ہے تو میں تو اس کو اس طرح انالائز کر لوں گا اپنے مرشد صاحب کے فرمان کو، کہ اگر تو میں ان الفاظ کو لے لوں تو وہ تو شرک ہو جائے گا، ایک سیدھی بات ہے. لیکن جس نیت سے اور جس مقصد سے الفاظ کہے گئے ہیں وہ ایک فلسفی ہے، ایک منطق ہے، لاجک ہے. وہ منطق اور لاجک یہ ہے کہ میں اگر اپنے شیخ سے بہت پیار کرتا ہوں، ان سے عشق ہے مجھے، جو کہ ہے، تو مجھے اندیشہ ہر وقت یہ رہے گا کہ میں اپنے مرشد صاحب کی بتائی ہوئی راہ سے ایک قدم بھی لیفٹ اینڈ رائٹ نہ جاؤں، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہوں گے. تو چونکہ مجھے ان سے پیار ہے، بہت عشق ہے، تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے مرشد مجھ سے ناراض ہو جائیں. तो जो उन्होंने फरमाया कि हमसे प्यार करते रहो मंजिल को जा पहुंचोगे, तो उससे मुराद उनकी शायद ये है कि मैं अगर उनसे बहुत प्यार करूं तो फिर मुझे ये खौफ कि मेरे मुर्शिद मुझसे नाराज ना हो उनकी हर बात उनके हर हुक्म की तामील पर मजबूर किए रखेगी। इसी तरह जो उन्होंने फरमाया कि तुम हमारा नाम जपते रहो, तो उससे मुराद ये है कि अगर मैं अपने शेख को हर वक्त याद रखूं, उनको याद करता रहूं, तो ऑब्वियसली मैं उनसे प्यार करूंगा। तो याद वही रहेगा जिससे मुझे प्यार है। बात फिर वहीं चली गई। पहला जो जुमला उन्होंने फरमाया असल में वो बात थी कि जो मैंने तुम्हें बताया है वो पढ़ते रहो, मंजिल को जा पहुंचोगे। अगली दो बातें उनकी दर हकीकत मुझे उसी तरफ को ड्राइव करने के लिए थी कि मैं उनकी बताई हुई हर बात पे अमल कर लूं। अब ये मंतक है। वैसे तो अगले दिन एक साहब ने मुझे कहा कि ये मेरे मोबाइल पर पढ़िए, ये क्या है पढ़िए क्या, वो वीडियो थी असल में। तो उसमें एक साहब डिफाइन कर रहे थे कि वो मंतक या लॉजिक किसको कहते हैं। तो वो सुना रहे थे कि एक साहब ने जहां से मैंने सुनना शुरू किया, मैं वहीं से सिर्फ बता पाऊंगा, उससे पहले क्या था मेरे इल्म में नहीं। तो चौधरी साहब से कहा कि आप, चौधरी साहब ने उनसे पूछा कि शहर तुम क्या करने गए थे। उसने कहा जी मैं पढ़ने गया था। तो पढ़ के क्या मिलेगा तुम्हें? तो उन्होंने कहा जी पढ़ के मेरा दिमाग जो है मंतकी हो जाएगा। उन्होंने कहा वो मंतकी हो जाएगा क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा जी मेरे लाशऊर में एक शऊर पैदा हो जाएगा। कहा कि ये तो पहले से भी मुश्किल बात कह दी तुमने, तो इसको एक्सप्लेन करो। कहा जी मैं मंतक सीख जाऊंगा। कहा वो क्या होती है? कहा कि देखिए मैं समझाता हूं मंतक क्या होती है। तो उसने पूछा कि चौधरी साहब आपके घर में कुत्ता है? कहा हाँ है, एक की बजाय दो हैं। इसका मतलब आपका घर बड़ा है काफी, जिसमें दो कुत्ते रखे हैं आपने? नहीं, काफी बड़ा घर है। इसका मतलब आपके यहाँ और माल मवेशी भी होगा? अल्लाह का शुक्र है, गाय भैंसे बैल हैं। उन्होंने कहा जी इसका फिर मतलब ये हुआ कि आपके वालदैन बड़े नेक आदमी थे, बड़े अच्छे लोग थे, कि उन्होंने आपके सहूलत के लिए इतना बड़ा मकान बनाया। बात तो दुरुस्त है। क्या इसका मतलब यह है कि बड़े मेहनती लोग थे, तो ये इतना बड़ा घर बना के आपके हवाले कर दिया? उनका बात ये दुरुस्त है, सही है। तो कहेंगे आप देखिए वो बड़े शरीफ और नेक लोग थे। ये मैं इस नतीजे पे कहां से पहुंचा? मैंने कुत्ते का पूछा था आपसे कि आपके घर में कुत्ता है, तो मैं कुत्ते से होते होते यहां तक पहुंचा कि आपके माँ बाप बड़े शरीफ लोग थे, अच्छे लोग थे, तो वहां तक आ गया। ये मंतक है। तो चौधरी साहब ने कहा कि वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात बता दी। अब वो चौधरी साहब से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये इल्म जो मैंने सीखा है ये मैं दूसरों पर वाजे करूं। अगले दिन नहा धो के कल्फ लगे कपड़े पहने चौधरी साहब ने और दोस्तों के यहाँ गए। इत्तफाक ये हुआ कि कोई दोस्त मिला नहीं जिसको बता पाते, तो बेचारे घूमते रहे तलाश में। शाम को आए, थके हुए थे, लेट गए, तो मुलाजिम शरफू जो है वो उनकी टांगें दबा रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो इसको तो मैं सिखा ही लूं मंतक क्या होती। तो उसने कहा कि शर्फू तुम्हें पता मंतक क्या होती है? उसने कहा नहीं साहब, मैं कहां पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूं कि मंतक क्या होती है। तुम्हारे घर में कुत्ता है? वो कहा नहीं चौधरी साहब, मेरे घर में कुत्ता कहां से आया? तो कहा इसका मतलब तुम्हारे माँ बाप फिर शरीफ नहीं थे। तो ये तो मंतकी जहन जो है वो इस तरह के काम करता है। तो अल्फाज पे मत जाइए। तो ये जो मुर्शद साहब का ध्यान हर वक्त अगर रहे तो इसका एक नतीजा मंतक के रूप से ये भी निकल सकता है कि आप टेलीफोन कर करके SMS कर करके अपने मुर्शद साहब के नाक में दम कर दें, इसका नतीजा ये भी निकलेगा। तो कुछ मिलने के बजाय आप गंवाना शुरू कर दें कि वो चढ़ना शुरू हो जाएगा। और मुर्शद साहब अगर एक बार चढ़ गए तो समझिए कि लुटिया डूबी, इल्म गया। क्योंकि जिसको इतना याद करेंगे उसको टेलीफोन जरूर बंदा करेगा या SMS करेगा। वो मैं वैसे भुगतता रहता हूं इस बात को, कोई 250-300 SMS आते हैं रोज। और सबसे खूबसूरत जो चीज होती है उनमें, हर आदमी ये समझता है कि मैंने SMS किया, शासक को मालूम है कि किसका SMS है, कभी नाम नहीं देंगे अपना नीचे, तो पता ही नहीं चलता कौन क्या कह रहा है मुझे। बस इसमें ये एहतियात कीजिए। हमने बहुत बचपन में वालदेन अपने वालदा से, वालदेन वालिद तो खैर वो बाद में पता लगा कि मैं, हमारा ये इम्प्रेशन कि वो अंग्रेजों से बढ़ के अंग्रेज थे, वो गलत था। वो तो पीर मेहर अली शासक बड़े करीबी मुरीदों में से थे जिनको पीर मेहर अली शासक बड़ा अजीज रखते थे। तो वालदा से ये होता था कि फकीर के दिल में उतर जाओ, वो एहतियात करो कि तुमसे चिढ़ ना जाए कहीं, उसके दिल में उतरो। तो अपने मुर्शद साहब के साथ भी यही रवैया, वो शायद कहीं लाशौर में ये बात बैठी हुई थी कि चिढ़ ना जाए मुझसे। तो एहतियात यही होती थी कि बावजूद इसके कि उनको इंतजार होता था कि मैं आया नहीं शाम को, फिर भी बहुत मोहतात। और मुर्शद साहब के पास गए तो सिर्फ आंखें और कान खुले, जुबान बिल्कुल बंद, जब तक के मुखातिब न कर ले। तो बात का घंटा घंटा, दो दो घंटे बैठे, मुखातिब नहीं किया, आप बोले नहीं, सिर्फ जाते हुए हल्के से सलाम किया, जो जगह मेरी मखसूस उन्होंने की हुई थी वहां बैठ गया, वहीं से सलाम किया, उठ के चले आए। इंतजार था कि जब जरूरत महसूस करेंगे मुखातिब कर लेंगे मुझे। तो उससे एक फायदा ये होता है कि मुर्शद साहब चिढ़ते नहीं है। और एक दूसरी बात यह है कि सुनने वाला हमेशा फायदे में रहता है कि वो रिसीविंग एंड पर है। मुर्शद साहब बोल रहे हैं, वो उसे गौर से सुन रहा है, तो मुर्शद साहब की बातों से इल्म अखज हो रहा है उसको। लेकिन अगर बोलेगा वो बंदा और मुर्शद साहब सुनेंगे तो जो उसके अंदर है वही बोल पाएगा, आगे बढ़ेगा तो नहीं कहीं। तो ये सब में अच्छा नुस्खा है। एक और सवाल है कि एक वली अल्लाह जो अब्दाल से भी कहीं ज्यादा ऊपर के मकाम पर होता है और एक वक्त में 40 मकामात से भी ज्यादा मकामात पर मौजूद हो सकता है, क्या मुमकिन है कि बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर वो किसी महफिल में भी मौजूद हो और ठीक उसी वक्त किसी दूसरे, तीसरे, चौथे मकाम पर भी कोई रूहानी ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहा हो अपने जिस्मानी वजूद ही के साथ? और अगर हाँ तो ये कौन सी डायमेंशन है, ये कैसे होता है, ये तो बहुत मजे की दुनिया है। देखिए एक जरा से करेक्शन कर लीजिए, वली अल्लाह अब्दाल से ऊपर नहीं होता, अब्दाल वली अल्लाह से ऊपर होता है। दर हकीकत वली अल्लाह कोई मकाम नहीं है वलायत का, ये बिल्कुल ऐसा है हर वो आदमी जो फौज में है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक, सिपाही से लेके फोर स्टार जनरल्स, वो सब फौजी हैं, सोल्जर्स। तो एक आदमी जो वलायत के लोएस्ट दर्जे पर फाइज है, जिसको अख्तियार कहते हैं, इमरान कहते हैं, ये दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं, ये वलायत का लोएस्ट दर्जा है। तो अख्तियार या इमरान से शुरू होकर वो इंतहाई ऊपर मकाम तक चला जाए, शहीद के मकाम तक चला जाए, सब वली अल्लाह है। तो वली अल्लाह कोई मकाम या ओहदा नहीं है, कोई दर्जा नहीं है वो। अब्दाल बाकायदा एक मकाम है, उसमें दर्जा है एक। ये अब्दाल की आपने सिफत लिखी है कि वो एक वक्त में कई जगहों पर पाया जाता है, लेकिन ये मैं एक इस सिलसिले में ये बता तो दिया इल्मी नुक्ता नजर से मैंने, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी जाती राय, साहब जो आदमी रब ताला के कुर्ब के लिए निकला है उसको इससे क्या लगे कि वो किस मकाम पर है, किस दर्जे पर है, वो एक वक्त में कहीं पाया जाता है या एक वक्त में दस जगहों पर देखा जाता है, उसकी बला से उसे क्या है। बल्कि अगर किसी ने आके कहा भी कि साहब आप तो लाहौर में थे, मैंने तो आपको फलां जगह देखा, उसको अहमियत ही नहीं देता, दिल में लाहौल पड़ता है, इसलिए कि उसके नजदीक तो ये भटका देने वाली बातें हैं, बहका देने वाली बातें हैं, वो इसको अहमियत नहीं देगा। अगर किसी ने कहा कि साहब आपने फलां बात कही थी, फलां वक्त वो बहने ही वैसी हो गई जैसे आपने कही थी, वो कहने वाले को तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन दिल में लाहौल पड़ेगा कि मुझे शैतान तकबर में न मुबतला कर दे, और साथ अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि या अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मेरी इज्जत रख ली और ये बात मेरी पूरी कर दी। कोई उसको कहता है कि तुम्हारे हाथ से ये करामत सरजद हो गई, तो वो तकब्बुर से पनाह भी मांगता है और शुक्र भी अदा करता है रब ताला का दिल में, इसलिए कि उसके नजदीक ये सारी सारी वो चीजें हैं कि अगर उसको बताई जाएंगी उसके बारे में तो वो अपनी राह से भटक जाएगा। उसकी राह तो एक बड़ी सिंपल राह है कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब ताला का कुर्ब हासिल हो जाए, उसका मतमईन नजर सिर्फ वो है। अगर कोई ये कह दे कि ये अपनी कशफ व करामात सारी मुझे दे दो और मैं तुम्हें अपना कुर्ब इलाही दे देता हूं, वो बहुत सस्ता सौदा समझ के सब कुछ दे देगा, उसको ले जाओ मुझे कुर्बे इलाही दे दो। तो हम इन चीजों पर नजर न रखें अगर हम वाकई ही रब का कुर्ब चाहते हैं। फिर ये भूल जाइए कि ये सब चीजें क्या होती हैं। जितना इनसे दूर रहेंगे उतनी राह हमारी आसान होगी रब ताला के कुर्ब की। फकीर ना अपनी तारीफ से खुश होता है ना उस अपनी बुराई बयान किए जाने पर किसी से नाराज होता है। उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखते। उसकी नजर तो एक जगह है कि रब ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राजी रहे हैं, बस बाकी कोई क्या कहता है कहता रहे। क्योंकि ये एक ऐसा रवैया है, ये दूसरों को एनॉय करता है कि मुझे ये बंदा अहमियत नहीं दे रहा। और इसीलिए मैंने एक दिन अर्ज किया था कि जो लोग अल्लाह की राह पे चलते हैं उनके मुखालफत बहुत होती है। और एक जनरल फार्मूला है कि 1/3 लोग उनकी फेवर में होते हैं, 2/3 लोग उनके मुखालिफ होते हैं। उनका ये रवैया दूसरों को खिलाफ कर देता है उनके। वो बादशाह की ताजीम में कभी खड़े नहीं होंगे। बादशाह बैठा हुआ है, उसको उन्होंने रिसीव किया बैठे बैठे, उसके बरक्स कोई रेड़ा चलाने वाला आ गया, कोई रेड़ी वाला आ गया, कोई मजदूरी करने वाला आ गया, तो उसको न सिर्फ खड़े होकर बल्कि 2 कदम आगे जाके रिसीव कर लेंगे। तो अनाय तो होना ही है बादशाह ने। ये रवैया इसीलिए है कि उसकी लिए ये अहमियत नहीं रखती कोई चीज। वो सिर्फ इसी बात पर नजर रखे है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे रब ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल हो जाए। तो इन बातों में ना पड़िए आप। एक सवाल यह है कि क्या वजह है कि रूहानियत की राह पर चलने वाले शख्स की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे कई लिहाज से बिल्कुल तन्हा कर दिया जाता है। क्या इसका मकसद दुनिया की हकीकत उस पर आया करके रब ताला पर उसका तवक्कल मजबूत करना होता है? यह सच है कि यह मकाम आता है इंसान। लेकिन दुनिया की हकीकत वाजे करने के लिए नहीं होता वो, बल्कि होता यह है कि जो हम अक्सर पढ़ते हैं कि हम रब की तरफ 1 कदम चलते हैं तो रब 2 कदम हमारी तरफ आता है। मुराद उससे यह है कि वो हमारे लिए असबाब पैदा करता है कि हम अगर खलूस नियत से रब ताला के का कुर्ब चाहते हैं तो असबाब पैदा कर देगा हमारे लिए कि हम उधर को बढ़ सकें आगे। जो चीज इस राह में या यूं कहिए गौर फिक्र में रुकावट है वो कंपनी है। क्योंकि फकीर के पास आने वाला आदमी खामोश नहीं बैठेगा, वो तो अपनी गर्ज से आया है, उसने बयान भी करनी है, उसने उसका जवाब भी चाहना है। अगर ज्यादा देर बैठा है तो वो अपने मतलब की बातें भी करेगा। तो जब तक इंसान के पास दूसरा कोई बैठा है उसकी तवज्जो उधर को रहेगी, वो गौर फिक्र से दूर हो गया। जितने ज्यादा लोगों के साथ मिलेगा उतनी ही किस्म किस्म की बातें सुनेगा वो, और बहुत सी बातें उसके जहन में रह जाएंगी। जब वो इबादत कर रहा होगा तो जहन में वो ख्यालात चलते रहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी। इस राह पर चलते हुए जहां ये तन्हाई का मकाम है वहां ये भी मकाम आता है कि उसको हर तरफ से जख्म लगते हैं, कचोके लगते हैं, हर तरफ से उसे सुइयां चुभी जाती हैं। अब चूंकि सब्र करना है, उसने जवाब नहीं देना किसी को, तो वो उन कचोकों का दर्द और उन कचोकों की तकलीफ सवा हो जाती है, क्योंकि जब हम दुख और दर्द को खामोशी से सहते हैं, किसी के पास बयान नहीं करते, हाय-हाय नहीं करते, वावेला नहीं करते, अंदर ही अंदर उसको सहते हैं, तो उसकी तकलीफ बहुत होती है। तो तकलीफ जब दुनिया से बहुत पहुंचती है तो इंसानी फितरत में है कि जहां से उसे दुख और तकलीफ मिलता है वहां से वो दूर भागता है, उस तरफ को जाता है जहां उसको प्यार मोहब्बत सुकून मिले। तो फिर उसके लिए एक ही गोशा आफियत होता है, वह है रब की हजूरी। तो चूंकि दुखी है तो जब रब ताला के हजूर हाजिर होता है नमाज के जरिए से, कुरान पाक की तलावत के जरिए से, उसके जिक्र अज़कार से, तो वो तकलीफ उसकी अल्फाज के जरिए भी बह निकलती है और आंखों के जरिए भी बह निकलती है। रब को बड़ी शिद्दत और दर्द से वो उसे याद करता है। तो ये एक तन्हाई का वो मकाम या वो पीरियड, जितनी देर में तन्हा कर दिया जाता है इंसान, वो एक नेमत है इंसान के लिए कि इंसान अल्लाह की कुर्ब की तरफ वो रास्ता बहुत आसानी से तय कर लेता है, तेज रफ्तारी से करता है। ये एक और सवाल है कि अच्छा, जिन साहब ने भी सवाल पूछे हैं ये अपने मुर्शिद साहब की जान को आए हुए हैं। ये फिर सवाल मुर्शिद साहब ही का कि एक इंसान अपने मुर्शिद साहब की मुसलसल मेहनत, तवज्जो, तरबियत और मोहब्बत की वजह से दुनियावी परेशानियों को नजरअंदाज करके किसी हद तक सीटी बजाना सीख ले, लेकिन जब अपने रूहानी मामला देखे जहां अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की ख्वाहिश और जौक और शौक तो बेहद हो लेकिन अमल का कासा खाली, महबूब के जलवों और कुर्ब से महरूम, तही दिल तही दस्त तही दामन शख्स कैसे सीटियां बजाए, अपनी महरूमी को कैसे दूर करे। ये इस सवाल में दो تضاد بیان کیے ہیں اپنی ذات کے بارے میں, جن صاحب نے بھی سوال پوچھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے شیخ نے آپ پر ایسی محنت کی ہے, بقول آپ کے مسلسل محنت, توجہ اور تربیت اور محبت, جب شیخ نے یہ آپ کو چاروں چیزیں دے دی اور آپ کو شیخ اپنی اس محنت, تربیت, تعلیم, محبت, اس کے ذریعے اس مقام تک لے گیا جہاں آپ بقول آپ کے سیٹی بجا سکیں, تو یہ جو سیٹی بجانا ٹرم آپ نے یوز کی ہے, شاید اس کی بیک گراؤنڈ آپ کے علم میں نہیں ہے. انگریز نے جب یہاں حکومت کی تو کچھ لوگ ہاف کاسٹ تھے, ان کے فادر یا تو انگریز تھے اور والدہ انڈین تھی, یا والدہ انگریز تھی اور والد انڈین تھے, تو یوں وہ ہاف کاسٹ تھے. اور لیٹر آن یہاں ان کو اینگلو انڈینز کا نام دے دیا گیا. تو اینگلو انڈینز گورا ویسے بھی دیکھنے کو لگتا ہے کہ بڑا خوشحال ہے, وہ بیچارہ خالی جیب ہوتا ہمیشہ یا کریڈٹ کارڈ پر زندہ رہتا ہے. آپ میں سے جو حضرات یو کے کثرت سے جاتے ہیں, وہاں چھٹیاں گزارتے ہیں, ان کے علم میں ہوگا کہ وہاں پیسہ ویسا کسی کے پاس ہوتا نہیں, ماسوائے ان کی جو 2% آبادی ہے وہ حقیقتاً فلدی ریچ ہے. لیکن ان کے یہاں 70% آبادی وہ ہے جو اپنی زندگی کو چلائے رکھتی ہے کریڈٹ کارڈز کے سر پر, باقی 25-28% وہ لوگ ہیں جو ویل آف ہیں, امیر تو نہیں ہیں بٹ وہ ویل آف ہیں. 2% آبادی ہے وہ فل دی ریچ ہے وہاں. تو پاکستان یہاں انڈین سب کانٹیننٹ میں بھی انگریز کا وہی حال تھا, تو اینگلو انڈینز عام طور پر مالی لحاظ سے کمزور ہوتے تھے, وہ بیچارہ بھوکا ہے, بھوک بہت لگی ہوئی ہے, اب اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈال کے تو بھوک کو بہلا رہا, سیٹی بجاتا پھر رہا. تو یہ ٹرم وہاں سے نکلی کہ جو آدمی دکھ میں ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے, تو یہ ٹرم وہاں سے اختراع اس کی ہو گئی, یہ اس کو کہتے ہیں سیٹی بجانا. تو اگر آپ کے شیخ آپ کو اتنی محنت کے بعد اس مقام پر لے گئے جہاں آپ اس کے اہل ہو گئے کہ اپنے دکھ درد تکلیف اس پر آپ سیٹی بجا سکیں, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی طور بھی آپ کے بقول یا آپ کا کاسہ خالی ہے یا آپ تہی دامن ہیں, تہی دست ہیں, وہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ یہی تو وہ مقام ہے کہ جہاں رب کے عشق میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور اپنی تکلیف بھول کر وہ سیٹی بجاتا پھرتا ہے اپنے رب کے مان کے سر پر کہ میرا رب موجود ہے, وہ مجھے کبھی طرح نہیں چھوڑے گا, وہ مجھے لک آفٹر کرے گا. یہ جو ایک یقین ہے, یہ یقین انسان کو اپنے دکھوں پر کہہ کے لگانا سکھاتا ہے. تو اگر آپ کے شیخ اس مقام تک لے گئے تو پھر تو اپنے اوپر نظر دوڑائیں گے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کا دھیان اپنے رب پر نہ جائے کہ میرا رب ہے, मेरा रब मुझे लुक आफ्टर करेगा, मेरा रब मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। ये एक ईमान खुद ब खुद आता है। तो जिसको ये चीज हासिल हो गई, मेरे ख्याल में तो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है वो। इसका दूसरा पहलू जरूर काबिल गौर होता है, ये आपके मुर्शिद का एजाज है कि आपकी तरबियत ऐसी कर गए वो कि आपको अपना आप छोटा दिखाई देता है। ये जो आपने तही दामन लिखा, तही दस्त लिखा, ये असल में आपके इल्मी लिहाज से गरीब होने की निशानी नहीं है, ये आपके मुर्शिद की तरबियत का एजाज है कि आप अपने आप को छोटा समझते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए कि इंसान में तकब्बुर नहीं आएगा। तो इस लिहाज से ये रहमत है कि इंसान को अपना आप बिल्कुल खाली और छोटा दिखाई दे, और एक सही मायनों में दिखावे का नहीं बल्कि सिद्क दिल से इंसान ये समझे कि मेरे पास क्या है, मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं हूं, तो खाली हाथ हूं मैं। इस तरह उसको हर आदमी अपने से बड़ा दिखाई देगा, और जो जब हर आदमी उसको अपने से बड़ा दिखाई देगा तो वह आजजी हो जाएगी, और आजजी रब को बहुत पसंद है, वही फल देती है। ये तो बहुत बड़ी आपने एक नेमत का जिक्र किया, इस पर तो रब का शुक्र अदा किया जाना चाहिए कि मैं अपनी नजर में खुद ही बहुत छोटा हूं। माफ कीजिएगा, आपके 5 मिनट ज्यादा ले गया मैं, इनके कुछ सवालात बाकी हैं, वो इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी नेक्स्ट संडे, उस वक्त के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।